राम राम हरे 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 कृष्णा प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत के कथा प्रार्थनाओं के अंतर्गत ध्रुव महाराज की प्रार्थना भगवान प्रश्न गर्भ नारायण को तपस्या के उपरांत नारद जी की कृपा, माता की प्रेरणा और भगवान का साक्षात दर्शन और भगवान की अहितुकी कृपा, उनके हाथ में जो शंख है उसका स्पर्श, ध्रुव के हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकट्य, और फिर ध्रुव महाराज अद्भुत प्रार्थना कर रहे हैं। उसके अंतर्गत आज हम 11वां श्लोक पढ़ेंगे, 4, 9, 11। अति उत्तम ये प्रार्थना सबके लिए अभ्यास में लाने जैसी है। भक्तिम मोहो प्रवतां त्वयि मे प्रसंगो भूयाद् अनंत महतां अमलाश्यानां येन अञ्जस उल्बणं उर्वयसनं भवाबधिम् नईशे भवद गुण कथा मृतपान मत। भगवान को कहते हैं अनंत। हे भगवान अनंत, एक कृपा करें हमारे ऊपर। क्या? भक्ति मुहु, मुहु का मतलब निरंतर, बार बार भक्ति करने के लिए। कैसी भक्ति? प्रवत्ताम, प्रवाह के जैसे जैसे गंगा की धारा बहती रहती है, ऐसी भक्ति जो निरंतर चलती रहे, अनन्य चलने वाली भक्ति। किसकी भक्ति? त्वयी, आपकी भगवान। किसको चाहिए? मैं। तो भगवान से पूछते हैं, कौन देगा? बोला प्रसंगो, प्रकृष्टेण रूपेण संग, पूर्ण रूप से भक्तों का जब संग मिले। भूयाद, दोबारा, बार बार भूयाद, आपके भूयाद का अर्थ है ऐसे हो जाए भगवान, आप कृपा कीजिए। तो पहली बार, और कैसे भक्त चाहिए? तो कहते हैं महताम अमल आश्यानाम, ऐसे महान उत्तम अधिकारी भक्त हो जो अमल, अमल जिसके अंदर कोई मैल नहीं है, हृदय में कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, शुद्ध पवित्र, जिनका हृदय है, ऐसे भक्तों का संग, शुद्ध भक्तों का संग मिले। तो ध्रुव महाराज की प्रार्थना का भाव है, हे अनंत भगवान, आपके निरंतर शुद्ध भक्त जो धारावाहिक भक्ति में तलीन है, उनका मुझे संग मिले, तो उससे आपको क्या लाभ होगा? येन अंज उल्बणम उर्वयसनम भवाब्धिम, ये ना उस संघ के द्वारा अंजसा, बहुत आसानी से उल्बणम उरु, उल्बणम का मतलब बहुत भयानक, और उरु भव अब्धिम का मतलब है महान भव सागर। वो भक्तों के संग से संसार के भयानक भव सागर को मैं पार आसानी से कर जाऊंगा। नईशे भवद गुण कथा मृतपान मत। कैसे? बोला भगवान, आपकी जो गुण रूप नाम लीला की कथा है, ये जो है ना कथा आपकी, नईशे मैं पार कर जाऊंगा, ये कथा पान करूंगा तो मैं इतना मदमस्त हो जाऊंगा, इतना उन्मत्त हो जाऊंगा कि मुझे पता ही नहीं लगेगा कि संसार दुखमय है, और मैं इसको पार करके चला जाऊंगा। तो अति सुंदर भाव है, और ये भक्ति का अति उत्तम प्रार्थना है। तो 11वें श्लोक का भाव श्रीधर स्वामी जी का सुनते हैं। हे अनंत भगवान, मुझे आप उन विशुद्ध हृदय वाले महापुरुषों की संगति बार बार प्रदान करें, जो आपकी निरंतर भक्ति किया करते हैं। अब चाहिए क्या? चाहिए विशुद्ध भक्तों का संग। किससे मांग रहे हैं? अनंत से, जिसके पास कोई कमी नहीं है। और कैसे भक्त? जो पहले तो जिनका हृदय विशुद्ध है, अमल आशिया नाम, और बार बार मोह का मतलब बार बार निरंतर उनका संग मिलता रहे, जो निरंतर आपती भक्ति करते हैं। इससे कि मैं अनेक प्रकार के दुखों, वो जो उलबन है, के परिपूर्ण इस भयंकर भव सागर को आपकी कथा रूपी अमृत का पान करने से मत बना हुआ आसानी से पार कर जाऊंगा। अतएव आप मुझे भक्तों की संगति प्रदान करें, जिससे मैं आपकी कथाओं का श्रवण कर सकूं। इसका अर्थ यह है, भक्तों का संग का अर्थ ही एक है, कथा का श्रवण। भक्त संग का मतलब है बोधयंत परस्परम कथ्यंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। भक्त का संग का मतलब निरंतर भगवान की कथा कीर्तन चलता रहे। और ऐसे भक्त जो आपकी निरंतर भक्ति किया करते हैं, ऐसे नहीं कहते, कभी कभी करते हैं, निरंतर रोज प्रतिदिन, यदि आप कहें कि तुम मुझसे मोक्ष की याचना नहीं करते हो, क्यों? अगर भगवान कहे कि तुम मोक्ष मांग लो, तो इस पर ध्रुव कहते हैं कि जिन महापुरुषों की संगति से बहुत अधिक दुखों से भरे हुए संसार रूपी सागर को आपकी कथा रूपी अमृत का पान करने से मत बना हुआ मैं बड़ी आसानी से पार कर जाऊंगा, कोई मुक्ति की जरूरत नहीं। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, हे अनंत भगवान, मेरे ऊपर एक कृपा कीजिए कि आपके उन्नत शुद्ध भक्तों का संग मिले, जो आपकी दिव्य प्रेममय सेवा में निरंतर लगे हुए हैं, जैसे धारावाहिक नदी बहती है, ऐसे भक्ति के साधन से, उनके द्वारा कथा सुनने से निश्चित रूप से मैं इस दुखदायक भव सागर को पार कर जाऊंगा, जिसके अंदर बहुत भयानक लहरें उठ रही हैं। ये दावानल के समान है, आग के समान है, मैं पार कर जाऊंगा, आसानी से पार कर लूंगा। आपकी कथा अमृत जो दिव्य है, बस वो इस भव सागर से मुक्त करने का उत्तम साधन है। चक्रवर्ती वाद लिखते हैं, हे अनंत भगवान, कृपा कीजिए कि आपके शुद्ध भक्तों का संग, शुद्ध हृदय वाले भक्तों का संग, जो आपकी भक्ति प्रेम पूर्वक नित्य करते हैं, वो मुझे प्राप्त होता रहे। ऐसे संग से मैं मद मस्त हो जाऊंगा आपकी कथा के अमृत पीकर, और ये संसार सागर, इसको तो मैं आसानी से पार कर जाऊंगा। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, पहली बार भक्ति जिसमें मुख्य श्रवण और कीर्तन है, वो तब तक मधुर नहीं होती, तब तक रसीली नहीं होती, जब तक संग नहीं होता भक्तों का। बिना भक्तों के संग के भक्ति में रस नहीं आता, मधुरता और मिठास नहीं आती। इसलिए ध्रुव महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रवाहताम भक्ति, वो भक्ति जो प्रवाह रूप चलती है, ऐसी भक्ति की प्रार्थना कुंती महारानी ने की थी कि भगवान जैसे गंगोत्री से गंगा की धारा उतर के और सागर तक मिलती है बिना कहीं रुके, ऐसे मेरी भक्ति की धारा निरंतर आपके चरणों की ओर बहती रहे, इसमें कोई अवरोध ना आए। तो फिर प्रश्न उठाते हैं, तो आपको भव सागर का भय नहीं है? तो ध्रुव महाराज ऐसे हाथ ऊपर करके कहते हैं, चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, अपना हाथ ऊपर करके बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि इस भयानक भव सागर को, जिसमें बहुत पीड़ा और परेशानियां हैं, आसानी से मैं पार कर जाऊंगा भक्तों के संग से और सहारे से और आपकी कथा अमृत के पान करने से। ये कथा अमृत आपकी गुण रूप नाम लीला वाली इतनी ऐसी है, इससे क्या होगा? बोला इससे तीन बातें तो मेरे को लाभ होगा कि जो भौतिक जगत में ईर्ष्या होती है वो मेरे अंदर आएगी नहीं, पहले ईर्ष्या नहीं आएगी और अज्ञान नहीं आएगा, क्योंकि आपकी कथा तो मेरे को अमृत की तरह अज्ञान को नाश ही कर देगी। तो किसी से द्वेष नहीं होगा, किसी से ईर्ष्या नहीं होगी, अज्ञानता नहीं होगी, यही तो संसार में बंधन है और इन्हीं के कारण संसार में लोग दुख भोगते हैं। तो संसार के दुख का कारण है ईर्ष्या, अज्ञानता और द्वेष। और फिर गुरु महाराज कहते हैं ये तो छोड़िए, मैं मृत्यु से भी नहीं डरता हूं। ऐसे आपके भक्त जो आपके कथा अमृत में मद मस्त है उनको मृत्यु भी हाथ नहीं लगाती है। और गुरु महाराज ने ये कहा नहीं है, उन्होंने ये सत्य करके दिखाया है। बद्रिक आश्रम में जब विमान वैकुंठ से आया, नंद सुनंद विमान लाए और कहा गुरु महाराज आप वैकुंठ चलिए। गुरु महाराज ने अलकनंदा में स्नान किया, साधु संतों को प्रणाम किया और जब विमान में चढ़ने लगे तो मृत्यु आके खड़ी हो गई। ये है मृत्यु, संसार है गुरु महाराज। कहा आपके सर के ऊपर पांव रख के मैं वैकुंठ के विमान में चढ़ता हूं, और मृत्यु के सर के ऊपर पांव रख के गुरु महाराज वैकुंठ के विमान में चढ़े। और कितने कृतज्ञ हैं गुरु महाराज। विमान चला है, गुरु महाराज कहते रोको, मेरी मां सुनीति ने मुझे भगवान को पाने का रास्ता बताया था, मैं उसको साथ लेके चलूंगा। उस समय नंद और सुनंद कहते हैं ध्रुव आगे वाले विमान में आपकी माता जा रही है, चिंता मत करो। और इसके तात्पर्य में शिला प्रभुपाद ने एक अद्भुत निम्रता का नमूना उपस्थित किया है और लिखा है। मैं तो अब 80 साल को 70-75 साल से ऊपर आ गया हूं, अंत समय पता नहीं भगवान की सुमरती हो ना हो, ध्रुव की तरह मेरा कोई शिष्य भगवत धाम जाते हुए मेरी यादगिरी करेगा तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। जो श्री प्रभुपाद सारे विश्व के लिए ये जहाज, इस कान का जहाज बनाया, कृष्ण भावना का, सब उसके अंदर भगवत धाम चले जाएंगे, वो ध्रुव महाराज के इस भाव से अपने भक्तों की ओर आशा रख रहे हैं कि शुद्ध भक्त ये हो जाएंगे। तो ये जो ध्रुव महाराज कह रहे हैं, अब सिद्धांत एक बता रहे हैं चक्रवर्ती पाद, भक्तों के संग से भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति से भगवान मिलते हैं। अब ध्रुव महाराज को तो भगवान मिल गए, सामने खड़े हैं, फिर भी उसी भगवान से भक्तों का संग मांग रहा है। ये भागवत का बार बार का प्रमाण है कि भक्ति से भगवान को मिले फिर भी भगवान से भक्तों के संग की प्रार्थना सबने की है। इसका अर्थ यह है भक्ति भक्तों के संग से प्राप्त होती है और भक्ति भगवान के धाम में भी साथ चलती है, वहां भी भक्ति चलेगी साथ में, भक्ति ही भक्ति का कारण है। अब श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत लंबा और बहुत सुंदर है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि महत्वपूर्ण गुरु महाराज की प्रार्थना में है भक्तों का संग, शुद्ध भक्तों का संग। वैसे कौन से भक्तों का संग कोई कहे तो उपदेशामृत लिखता है निंदा आदि शून्य, ऐसे भक्तों का संग जो किसी की निंदा नहीं करते, किसी में द्वेष नहीं देखते हैं, जिनका हृदय बिल्कुल शुद्ध है, जिनके जिसके हृदय में भगवान भरा पड़ा है, उसमें किसी के निंदा के लिए जगह ही कहां बचेगी। तो ऐसे शुद्ध भक्तों का संग ध्रुव महाराज कह रहा है। अब प्रभुपाद जी एक सुंदर शब्द लिख रहे हैं कि दिव्य भक्ति की प्रेममयी सेवा न पूर्ण होती है और न सुखदायी और आनंदमय होती है बिना भक्तों के संग के। भक्तों का संग नहीं है तो न तो भक्ति पूर्ण होगी और न ही सुखदायी और आनंदमय होगी। अब प्रभुपाद जी कहते हैं इसीलिए हमने ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की स्थापना की है। और फिर सावधान कर रहे हैं प्रभुपाद जी, अगर कोई समझे कि मैं इस कान से बाहर रह के और भक्ति करके भगवान को पा लूंगा और भक्ति को पूर्ण करके और सुख पाऊंगा तो ये मूर्ख है, ये रह रहा है स्वप्न के संसार में, ये भ्रमित है, लिविंग इन ए ग्रेट हेल्यूसिनेशन, क्योंकि यह असंभव है। ध्रुव महाराज के इन वचनों से, इस सिद्धांत स्थापित हो रहा है कि जब तक भक्तों का संग नहीं है तो भक्ति कभी परिपक्व नहीं होती। भक्ति में परिपक्वता बिना संग के नहीं आती, और जब तक भक्ति परिपक्व नहीं है तब तक भक्ति के कार्य और भौतिक कार्य में कोई अंतर दिखाई नहीं देगा। सामने वाला भक्त को भौतिक कार्य करने वाला ही देखेगा। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं ऐसी बात भगवान श्री कपिल देव ने भी देवती माता को 3:25:25 में कही है, सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो भवंती हृतकर्ण रसायणाः। एकमात्र मेरे भक्तों के संग में जो मेरी शक्तिशाली पोटेंट का मतलब है भगवत प्रेम को प्रकट करने वाली, जो कान और हृदय के लिए रसायन है, अमृत है, वो जब तक नहीं मिलेगी तब तक सफलता भक्ति में नहीं होगी। इसलिए ध्रुव महाराज एक ही बात मांग रहे हैं कि भक्तों का संग चाहिए। बोला ये भक्ति का संग कैसा है? प्रभुपाद लिखते हैं ये तो धारावाहिक नदी के समान है। और प्रभुपाद जी धारावाहिक नदी की तुलना दे रहे हैं कृष्ण भावना जो अमृत संग है, इसके अंदर हमने 24 घंटे भक्ति की ही धारावाहिक सरिता बहा दी है। सुबह 4 बजे मंगल आरती से लेकर रात को 9 बजे शयन आरती तक धारावाहिक भक्ति का कार्य होता है। सभी भक्ति की सेवा में लगे हुए हैं, इसको कहते हैं धारावाहिक भक्ति। अब प्रभुपाद जी एक प्रश्न उठा रहे हैं, हम तो गाते हैं, नाचते हैं और खाते हैं, भक्ति में करते क्या है? कीर्तन करो, नाचो और फिर भूख लगे तो खाओ बस। तो ये जो ज्ञानी लोग हैं, ये जो मायावादी लोग हैं, ये कहते हैं ये तो ठीक है, भक्तों के संग में मौज उड़ा लो, खा पी लो, नाच लो, गा लो, परंतु भवसागर को पार कैसे करोगे? ज्ञान नहीं होगा तो अज्ञान कैसे जाएगा? ये उनका प्रश्न होता है। प्रश्न के ऊपर प्रभुपाद जी कहते हैं, ध्रुव महाराज यहां का उत्तर दे रहे हैं कि ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये तो अंजसा है, बहुत आसान है। बोला कैसे आसान है? केवल मैं भगवान आपकी कथा, और प्रभुपाद जी इसको स्पष्ट कर रहे हैं, आपकी कथा भगवद गीता से, आपकी कथा कहां से सुनूं? भवद गुण कथा आपकी कथा निरंतर जो श्रीमद् भगवद गीता में है, भागवत में है, चेतना चरितमृत में है, तीनों को प्रभुपाद जी ने लिखा है। गीता में भगवान क्या बोलते हैं, भागवत में भगवान क्या करते हैं, और चेतना चरितमृत में भगवान क्या सोचते हैं, एक से एक ऊपर है। जहाँ गीता पूर्ण आहुति को पहुंचती है सर्वधर्मान परित्यज, वहां से भागवत शुभारंभ होता है। प्रोजित कैतव निर्मत सराणाम सता, सारे वो धर्म को त्याग करो तब भक्ति में प्रवेश करो। और जहां भागवत पूर्ण आहुति को पहुंचती है नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशन, वहां से चेतन चैतन्यमृत का शुभारंभ होता है। तो ये, और जो अपरूपद एक शब्द लिखते हैं जिसको इस कथा की इल्लत हो गई है, आदत पड़ गई है, नशा हो गया है, इसके बगैर रह नहीं सकता है, तो फिर तो वो मदमस्त होगा, नशे में हो जाएगा। ये कथा का नशा अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। एक गुरु नानक साहब ने दो शब्द कहे हैं, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये संसारी नशा करो और रात को पियो, सुबह उतर जाए फिर पागल हो जाओ, उसकी क्या जरूरत है। हरि नाम का नशा ले लो, हरि कथा का नशा ऐसा पियो जो दिन रात चला रहे और 24 घंटे 12 महीने और आजीवन चढ़ा रहे, जिसमें दुनिया के दुख का पता ही नहीं लगे। ये प्रभुपाद लिखते हैं ये नशा है, और इस नशे में इस भौतिक जगत के दुख की परवाह नहीं है, इसको तो हम पार कर जाएंगे। अब प्रभुपाद जी भौतिक जगत को दावागन, दावाग्नि, वन की आग जो कोई लगाता नहीं है अपने आप लग जाती है, और कोई बुझा भी नहीं सकता है जब तक भगवान की कृपा हो और बादल नहीं बरसे, तो ऐसी ये दावाग्नि है। परंतु जो भगवान की कथा में तलीन है, उस मस्त हाथी की तरह जो नदी में पहुंच चुका है, अब उसको कोई न प्यास की परवाह है न बन के आग की परवाह है, दोनों से मुक्त हो गया। ऐसे जगत के अंदर भी भक्त जैसे हाथी नदी में आनंद लेता है बन के आग से बचकर, और प्यास भी नहीं और गर्मी भी नहीं, ऐसे विश्व पूर्ण सुखायते, ये प्रबोधानंद सरस्वती के शब्द है, भक्त के लिए विश्व ये संसार पूर्ण सुखायते, पूर्ण रूप से सुखमय हो जाएगा। दुख तब होना जब पता लगे, पता ही नहीं लगता है हरि कथा में, और जितना समय आप कथा में रहते हो तब तक आपको दुख का पता ही नहीं लगेगा। अब प्रभुपाद जी कहते हैं ध्रुव महाराज के इन वचनों का भावार्थ ये है कि भक्तों के संग में हमारी भक्ति आगे बढ़ती है, और वही भक्ति की प्रगति का एकमात्र कारण है, और इसी भक्ति के साधन से हम भगवत धाम गोलोक पहुंचेंगे, और वह जहां वहां पहुंचेंगे तो वहां भी यही भक्ति करनी है। अब प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, आम होता है संसार में, कच्चा आम होता है उसको भी आम कहते हैं, फिर पीला हो जाएगा तो भी आम कहेंगे, और रसीला हो जाएगा मीठा तो भी आम कहेंगे। इसी प्रकार से भक्ति जब हम साधन करते हैं गुरु के निर्देश में, शास्त्र के आदेश के, गुरु के आदेश शास्त्र के निर्देश से, ये तीनों बातें लिखी हैं प्रभुपाद जी ने, भगवान गुरु के निर्देश में और शास्त्र के नियम से जब हम भक्ति करते हैं तो वो कच्चा आम के समान है, इसका मतलब साधन भक्ति के समान है। परंतु जब वो भक्ति परिपक्व हो जाएगी और भगवत धाम जाने के अधिकारी हो जाएंगे, तो भगवत धाम में आध्यात्मिक जगत में वही जो भक्ति होगी, वहां भी भक्तों का संग है, पर वहां पक्का रसीला आम हो जाएगा। वहां जो भक्ति है गोलोक धाम में, उसका नाम है राग आत्मिक भक्ति, वो है सिद्ध भक्ति, और जो हम कर रहे हैं ये है साधन भक्ति। तो साधन भक्ति की तुलना कच्चे आम से दी गई है, और सिद्ध भक्ति की तुलना पक्के आम से दी गई है, परंतु ये पक्का आम भगवत धाम तक हमारे साथ, उधर भी ये भक्ति भक्तों के संग में करनी पड़ेगी। दोनों भक्ति, वहां भी भक्ति रहेगी। ये अंतर है भक्ति के सिद्धांत में। और ज्ञान योग वाले भक्ति का सहारा लेते हैं और मुक्ति के बाद भक्ति को छोड़ देते हैं। परंतु रसीली भक्ति, परिपक्व भक्ति, सिद्ध भक्ति, राग आत्मिक भक्ति तो भगवत धाम में मुक्ति के बाद ही होती है। और ऐसी परिपक्व रसमय भक्ति एकमात्र भगवान के भक्तों के संग में ही संभव है। तो ये श्लोक आप ये समझ लीजिए कि अपने जीवन में भक्ति की प्रगति के लिए कंठहार बना लीजिए। भक्तों का संग और हरि कथा, शुद्ध भक्तों का संग और गीता भागवत चेतन चैतन्य का कथा अमृत हमारी भक्ति को परिपक्व बनाने के लिए आवश्यक, अनिवार्य और अति कहा जाए कि अनिवार्य भी है, भी आवश्यक भी है और अति महत्वपूर्ण भी है। अब एक श्लोक और पढ़ते हैं। आज सफर भी किया है और एक दूसरी क्लास भी है और एक क्लास पहले हो भी चुकी है। 12वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। तेना स्मरन्ते अतितरां प्रियमीशमर्त्यं ये चा अन्वादसुत्त सुहृदग्रावितदारा ये त्वा भजना भवदीय पदारविन्द सौगन्धया लुब्धा हृदेषु कृत प्रसंगा। ते न स्मरन्ति, वो नहीं स्मरण करते हैं। कौन भक्त? जो भक्तों के संग में कथा में मगन हैं, मदमस्त हैं और पूर्ण रूप से कथा का जिनके ऊपर नशा चढ़ा हुआ है। न स्मरन्ति अति अति तरम प्रियम, जो अति से अति प्रिय ये अपना शरीर है ना, उसकी भी पता नहीं लगता है, कब सोए कब खाए कुछ पता नहीं। हे ईश, हे स्वामी, ये हमारे गोस्वामी वृंदावन में 22 घंटे हरि कथा कीर्तन और पुस्तक लिखना और मंदिर बनाना और भगवान की लीला स्थलियों को प्रकट करने में लगे हुए थे। 15 दिन में द्वादशी के दिन मथुरा पैदल जाते थे, ब्राह्मणों के घर से कुछ भिक्षा लाते थे, रोटी चने, और 15 दिन उसी को एक बार कभी सूखा खा लेते थे और कभी जमुना में डुबा के खा लेते थे। बस भोजन की चिंता नहीं, सोने की जरूरत नहीं, हरि कथा में ही मग्न थे। ऐसे शरीर जो सबको बहुत अति प्रिय है उसकी भी परवाह नहीं। ये किसको प्रिय होते? मर्त्यम, जो मृत्यु संसार वाले हैं इनको इसकी परवाह है। बोला केवल शरीर नहीं, ये चा अन्य अध्य और भी जो अनु अनु इसके जो शरीर से साथ जुड़े, शरीर का अनु, अनु का मतलब शरीर के साथ जुड़े हुए। क्या है जुड़ा हुआ? अध, इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है पुत्र सुत, सुहृद जो अपने शुभ चिंतक माता पिता आदि, ग्रह घर, वित्त धन और दारा पत्नी। ये संसार में आसक्ति का कारण है सबके लिए, शरीर और शरीर से उत्पन्न होने वाले संबंध और शरीर से कमाया हुआ धन और बनाया हुआ घर। परंतु ऐसे मदमस्त भक्तों को इनकी कोई परवाह नहीं है। मंडलपति श्रेणी तुच्छवत, ये गोस्वामी बड़े बड़े मंत्री पद के ऊपर थे, जिनके पास नाव भरी हुई स्वर्ण मुद्राएं थी, तुच्छवत सबको त्याग करके ब्रज के अंदर आके रहे। अशेष मंडलपति श्रेणी तुच्छवत, तुच्छवत का मतलब मुड़ के देखा ही नहीं कि उसको कमारे कुछ से कोई मतलब है क्या। ये तो कौन है वो ऐसा कर सकते हैं। ये तो अबज नाभ, अबज नाभ का मतलब हे कमल नाभ, हे पद्म नाभ, भगवान नारायण कृष्ण साक्षात कृष्ण को दो। कुंती महारानी कहती है पद्म नाभाय, हे पद्म नाभाय, हे पद्म, हे कमल नयन, हे चरण कमल अंत में कहती है। तो कमल नाभ कृष्ण है। भवदीय पदारविंद, आपके चरण कमल, उसकी कौन सी चीज जिसको मिल गई है, सौगंध्य लुब्ध। सौगंध्य का मतलब उसके सौरभ निकलती है, भगवान के चरणों से एक सुगंध निकलती है। उस सुगंध का अनुभव किया था चार कुमारों ने, वैकुंठ में नारायण के चरणों में लगी हुई कस्तूरी और तुलसी और केसर, और फिर भगवान के अपने चरणों के अंदर एक वैसी सुगंध है। वो उस ज्ञानियों, भगवान के अवतार और ज्ञान की मूर्तिमान स्वरूप चार कुमारों की नासिका में गया, भक्ति का ऐसा उदय हो गया, ज्ञान तो उनको कपूर की तरह उड़ गया और भगवान के प्रेम में मदमस्त हो गए। तो भगवान के चरणों का जो ये सौरभ है, सुगंध है, ये भौतिक रोग से मुक्त करने वाली है। ये काल रूपी सर्प से काटे हुए को तुरंत जीवित कर देती है। लुब्धा का मतलब है जो लोभी है उसका, जो उसमें लालच उसको हो गई है, यही चाहिए यही चाहिए। हृदय कृत प्रसंग कहां से मिलेगी, प्रसंग आपके भक्तों के संग से, उसके हृदय में आपके भक्तों के सिंह से, जिन भक्तों के हृदय में आपके चरण कमलों की ये सौरभ है, उनके संग से जिसको कथा का अमृत मिल गया, वो संसार में न शरीर और न शरीर के संबंध के चीजों की परवाह करेगा और आपकी भक्ति में मदमस्त रहेगा। ये ध्रुव महाराज की अनुभूति है। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि ध्रुव महाराज ने फिर कुछ नहीं किया। भगवान ने ध्रुव महाराज को फिर भी राज दिया, ध्रुव महाराज का घर परिवार हुआ, ध्रुव महाराज ने 60,000 साल तक राज भी किया, परंतु किसी से प्रभावित नहीं रहे, आनंद में भगवान के कथा कीर्तन में ही मगन रहे। ध्रुव को फिर भगवान, भक्तों का संग भगवान ने प्रार्थना की थी, मिला क्या? प्रार्थना की है तो मिलना चाहिए ना। ध्रुव महाराज को अपने भाई उत्तम की यक्षों के द्वारा मृत्यु के बाद इतना क्रोध आया कि यक्षों से युद्ध कर रहा था, यक्ष चुन चुन के यक्षों को मार रहा था। उस वक्त स्वयं भूमनु जो इनके दादा है, जो एक भागवत है 12 भागवतों में, मनु भी भागवत है, उनने कहा कि बेटा जो बड़ों का आदर करता है, समान वालों से मैत्री करता है और छोटों के ऊपर दया करता है, उन्हीं से भगवान प्रसन्न होते हैं। एक यक्ष ने आपके भाई को मारा, आप यक्षों के वंश का विनाश मत करो। ये भक्त का संग ध्रुव महाराज ने आज्ञा का पालन किया। कुबेर यक्षों के राजा ने ध्रुव महाराज को इस भक्त के संग और उसके प्रभाव की प्रशंसा की, और फिर ध्रुव महाराज ये राजपाट को छोड़ के गंगा के किनारे चले गए। ऋषिकेश में थोड़ा समय रहे, वहाँ ध्रुव का मंदिर है लक्ष्मण झूले के पास, गंगा बहुत वहाँ धारा में बह रही थी, आवाज बहुत हो रहा था। ध्रुव महाराज ने कहा मैं भगवान के सुमरण में गंगा की ध्वनि विघन डाल रही है, गंगा जी सामने खड़ी हो गई, यहाँ अब कोई आवाज नहीं होगा। और लक्ष्मण झूले के पास ही गंगा बिना आवाज के बहती है आज भी, उतने ही टुकड़े में 1 किलोमीटर में। ध्रुव महाराज फिर वहां से ऊपर बद्रिक आश्रम में गए, जहां से विमान में गए। तो ये ध्रुव महाराज का जो भाव है ये अति सुंदर है। आइए इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। श्लोक संख्या 12। हे कमलनाथ भगवान, जो लोग आपके चरणारविंद की सुगंध में लुभाए हृदय वाले आपके भक्तों के सत्संगति करते हैं, वे अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर को तथा इसके संबंधी पुत्र मित्र ग्रह धन तथा पत्नी का भी सुमरण नहीं करते। कौन सुमरण उनका करता है? बोला भगवान करता है। इतना भगवान सच, ये तो सच ये है, जिसमें इतनी भगवान में तलीनता आ जाती है, भगवान उनके सारे काम अपने आप करते हैं, ये भगवद गीता में भगवान ने आश्वासन दिया है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम ये नमा सॉरी ये नहीं ये श्लोक है, योगक्षेमं वहामि अहम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, ये जना परिपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेम। आप भगवान के भजन में है, भगवान आपकी चिंता में है, इसकी अनुभूति भक्तों को होती है और ये सत्य है। अर्जुन को चिंता नहीं थी, कृष्ण को युद्ध के जीतने की चिंता ज्यादा थी। बहुत सी कथाएं हैं, उनको करने का समय नहीं, आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक में भी ध्रुव जी कथा अमृत की मादकता मतलब नशा का वर्णन करते हैं। जो लोग कथा अमृत का पान करते हैं, वे अपने अत्यंत प्रिय शरीर की भी परवाह नहीं करते। यही नहीं, वे इस मर्त्य शरीर के संबंध रखने वाले पुत्र मित्र कलत्र मतलब पत्नी आदि को भी नहीं याद करते। यदि कोई कहे कि ऐसे लोग कौन हैं, तो इसका उत्तर है कि जिन लोगों का हृदय आपके चरण कमलों की सुगंध का लोभी है, उन भगवत भक्तों की सत्संगति करने वाले। ये तू का शब्द का अर्थ है, ये बतलाता है कि जो लोग केवल योग आदि में निष्ठा रखने वाले हैं, उनकी देह अभिमानी की निवृत्ति नहीं होती। ये शब्द कौन कह रहा है? श्रीधर स्वामी कह रहे हैं। श्रीधर स्वामी जी कह रहे हैं कि ये तू शब्द कहता है कि जो योगी आदि हैं, ज्ञानी हैं, वो अपने देह के निवृत्त नहीं हो सकते हैं। अब हमारे आचार्यों का भाव सुनते हैं। ओहो कृष्ण, श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, हे पद्मनाभ गोविंद भगवान नाथ, अगर कोई आपके ऐसे भक्तों का संग करे जिनके हृदय में आपके चरण कमलों की सौरभ की लालसा है, इसका अर्थ है रागात्मिक भक्तों का संग, रसिक भक्तों का संग, जिनको भगवान के लीला में रस आ गया है, उसी में जो मद मस्त रहते हैं, उनका संग मिल जाए तो फिर वो शरीर और शरीर के सारे संबंधों को भुला देते हैं, उनकी परवाह नहीं करते, याद ही नहीं होता है। चक्रवर्ती पाद भी यही बात कर रहे हैं। प्रश्न चक्रवर्ती पाद ये उठा रहे हैं, अभी मैं और मेरा तो शरीर में रहता ही है ना, तो फिर तो सारी समस्याएं तो बनी रहेंगी, तो आपकी भक्ति इससे कैसे आपको बचाएगी? तो इसके उत्तर में न समरंती, वो स्मरण ही नहीं करते अपना मैं कौन हूं, ये भी नहीं याद करते कि ये शरीर हूं मैं, वो तो मैं भगवान का गोपी गोपी भरतहु पद कमल योर दास दास अनुदास, मैं तो गोपी जन भगवान गोपीनाथ के चरणों के भक्तों के दासों का दास हूं, मुझे क्या जरूरत है किसी की, मैं कौन हूं ये परवाह नहीं। और शरीर के संबंध को भूल जाते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं तू शब्द का अर्थ है जो अभी आपको बताया कि योग आदि से ऐसी विस्मृति नहीं हो सकती, और उसके लिए श्लोक उद्धृत कर रहे हैं हमारे चक्रवर्ती पाद भागवत के 10वें स्कंद के 87 अध्याय के 32। निरशो तव मयया भ्रमम अमीशवा अवगत्य भृशम त्वयि सुधियो अभव दधति भावम अनो प्रभवम कथम अनुवर्तताम भव भयम तव यद ब्रोकुटी सृजति महुत्री नेमहि अभ्यवचरणेषु भयम। वो बुद्धिमान व्यक्त आत्माएं महात्मा जो समझते हैं कि माया संसार में लोगों को कैसे नचा रही है, वो तो आपकी प्रबल भक्ति का आश्रय लेते हैं और ये आपकी भक्ति क्या हो गया विष्णु जी, क्या हुआ हरे कृष्णा विष्णु, क्या हुआ जोशी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कोई समस्या है क्या? विष्णु जोशी का फोन आ रहा है, हरे कृष्णा आवाज आ रहा है, हरि बोल, कोई बोले भाई, आप में से किसी का आवाज मुझे नहीं आ रहा है, आपको मेरा आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा, हाँ जी, ओके, हरे कृष्णा, और जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं उनको ये त्रिकाल लिखा है, ट्रिपल रिम्ड व्हील ऑफ टाइम, ये काल सदा भयभीत करता रहता है। ये भक्ति क्या करती है? जरायत्याशो या कोशम, ये तो सूक्ष्म शरीर को गला देती है। निग्रणम अनलो यथा, जिस प्रकार से पेट में डाला हुआ भोजन जठरा अग्नि गला देती है, ऐसे भक्ति सूक्ष्म शरीर को गला देती है। सूक्ष्म शरीर नहीं रहता है तो जन्म मृत्यु कहां रहेगा? इसका अर्थ है भक्ति तो देती है भगवत प्रेम, संसार से मुक्ति तो उसका गौण लक्षण है, अपने आप मुफ्त में मिल जाती। प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्ति का विशेष जो लाभ वो ये है कि वो केवल भगवान की कथा कीर्तन में मदमस्त नहीं करती है, परंतु योगियों की तरह जो सारा दिन आसन प्राणायाम करके शरीर को पोषण करने में लगे होते हैं उससे भी मुक्त कर देती है। प्रभुपाद जी इसको श्रीधर स्वामी के भाव को, जिसको चक्रवर्ती पाद ने लिया है, उसको आधुनिक भाषा में लिख रहे हैं कि भक्ति कथा शरीरों को भी योगियों की तरह चौराहे और पार्कों के अंदर बैठ के आसन प्राणायाम करने की मूर्खता करने के पीछे नहीं लगाता है। भक्ति वाला ऐसे करने का नहीं, हरि कीर्तन में नाचेगा ये सारा व्यायाम अपने आप हो जाएगा। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में पहले पहले वो मिश्रा जी के योगा स्टूडियो में कीर्तन कर रहे थे तो कह रहा ये तो सारे योग के आसन इसमें अपने आप परिपूर्ण हो रहे हैं, कीर्तन के नृत्य में सब कुछ अपने आप हो जाता है। ये जो ज्ञानी और योगी हैं भक्ति में उनका कोई रुचि नहीं होती है, वो तो प्राणायाम भी करते रहते हैं, प्राणायाम करेंगे आसन करेंगे, ये तो सब शरीर के हैं, वो तो शरीर के स्तर के कामों में लगे होते हैं। परंतु ध्रुव महाराज कहता है नहीं नहीं, शरीर से ऊपर है भक्ति, समय हमारा व्यर्थ है, ऐसे शरीर के कामों में नहीं गंवाना चाहिए। शुद्ध भक्तों का संग मिल जाए तो फिर क्या होगा? तो फिर शरीर के सुख दुख का पता ही नहीं लगेगा और शरीर के संबंध वालों की चिंता भूल जाएगा, धन कहाँ है कोई बात नहीं, कैसे आएगा भगवान की इच्छा। श्रीवास ठाकुर ऐसे महात्मा गृहस्थी थे जिनके घर में, जिनका आंगन भगवान श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के नृत्य और लीला का स्थान था। चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन पूछा, श्रीवास गृहस्थी हो, पत्नी है, बच्चे हो, सारी रात कीर्तन करते हो, सारा दिन सेवा करते हो, कमाओगे नहीं तो खिलाओगे कहां से? श्रीवास कहां, भगवान कृष्ण बोला, नहीं दिया तो? बोला गंगा जल पी लूंगा। अरे दूसरे दिन नहीं दिया तो? गंगा जल पी लूंगा। तीसरे दिन? बोला गंगा में शरीर त्याग दूंगा, लेकिन करूंगा कुछ नहीं शरीर के लिए। तब महाप्रभु ने एक घोषणा कर दी वो सब भक्तों के लिए जो इस प्रकार से पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा आश्वासन है। चेतन महाप्रभु कहते हैं, श्रीवास ये असंभव है, परंतु अगर लक्ष्मी कभी भिखारी बन के गली गली में मांगे, वो असंभव है। सूर्य कभी ठंडा हो जाए, असंभव है, परंतु तुम जैसे भक्तों के पास कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, ये मेरा वचन है। बहुत बड़ी बात है, आप भगवान के ऊपर निर्भर होके देख लो, पूर्ण शरणागत होके देख लो, और क्या क्या भगवान चमत्कार कराते हैं उसके लिए पूरे पुराने इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी ने हमारे लिए अति उत्तम उदाहरण है, न 70 साल के शरीर की परवाह की कि क्या होगा, वृंदावन कौन छोड़ता है इस उम्र में, न पुत्र परिवार की परवाह की, और धन था ही नहीं, केवल भागवत और चेतन चरितमृत पढ़ते जा रहे थे और भागवत साथ में लिया था। क्या चमत्कार कृष्ण ने करके दिखाया। 10 ही सालों के बाद इसी वृंदावन के अंदर प्रभुपाद जी प्रवचन देते हुए कह रहे थे, दिखाओ दुनिया में कोई ऐसा व्यवसाय करने वाला 10 साल में $10 से मिलियन ट्रिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी पूरी दुनिया में कृष्ण की कृपा से बना ले। आप चिंता नहीं करोगे, कृष्ण को अधिचेतना हो जाए, लेकिन इस स्तर के आने के लिए विश्वास चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये भक्ति की विशेषता है, और ऐसा संभव तब है जब हम शुद्ध भक्तों का संग करेंगे, और उन शुद्ध भक्तों के संग में कथा में हमको रस आने लगेगा। वो कथा का रस ही भगवान के चरणों का सौरभ है। हरे कृष्णा, इन शब्दों के साथ 12वें श्लोक पे आज विराम देते हैं, कल 13वें श्लोक से। कल तो नित्यानंद त्रयोदशी है, आप लोग ग्रुप के ऊपर डालना क्या करना है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए, नहीं तो दूसरे क्लास की तैयारी करें। कोई है प्रश्न जिज्ञासा?